नारायण नारायण नारायण। वशिष्ठ जी बोलते कि राम जी जो संसार को सत्य मानता है वो महामूर्ख है। परिवर्तित संसार को, मिथ्या संसार को और शरीर को सत्य मानने से सारी आपदाएं प्राप्त होती, और अपने सोहम स्वभाव को, अपने आत्म स्वभाव को खोजकर सारी आपदाओं से सदा के लिए व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उस मुक्ति के लिए शिवाजी समर्थ रामदास को खोजने लगे। खोजते खोजते टाकली गांव का पता चला। इतना बढ़िया आश्रम है, इतना बढ़िया मंदिर है, महाराज जी बोले अभी चले गए। महाराज इतना इतना सारा संपदा कहाँ से आई आश्रम? बोले शिवाजी महाराज के राजकोष से ये सारा सारे आश्रम और संतों के मंदिर और मठ चलते। शिवाजी महाराज तो स्वयं थे। बोले अभी गुरु जी कहाँ मिलेंगे? बोले फलानी गुफा में गए। शिवाजी वहाँ गए, दिन भर बैठे, संध्या हो गई। फिर पता चला कि गुरु जी यहाँ से भी चले गए। अपने भाग्य को कोसते शिवा वापस तखतपुर में। राजकाज तो होता था बाहर से, लेकिन अंदर से छटपटाहट थी कि मैं अपने आत्मा को कब जानूंगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदो इति ब्राह्मण न बिद्धेति कदाचन। जहाँ वाणी नहीं जाती, मन और बुद्धि से परे और मन बुद्धि को सत्ता देता उस परमेश्वर स्वभाव में मैं कब जगूंगा? छटपटाहट बढ़ती गई। दोबारा माँ के मंदिर में जा बैठे, नहा धो के रात को के माँ अब फिर तू प्रकाश दे मेरे को। जब तक गुरु जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक यहां से नहीं हटूंगा। अन्न जल का त्याग करके माँ तेरा बालक तेरे चरणों में आया। माँ से नश्वर संसार की चीज नहीं मांगता, लेकिन शाश्वत परमात्मा सुख, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा स्वरूप की पहचान देने वाले सतगुरु की प्राप्ति के लिए अन्न जल छोड़कर बहादुर शिवा बैठा है। बैठे बैठे सुमरण चिंतन करते, एकाग्रता करते 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 रात कैसे बीती, प्रभात को समर्थ वहीं प्रकट हुए। दर्शन दिया, प्रसाद दिया, माला दी, टाकली गांव में था लेकिन तेरी तड़प ने यहां बुला लिया है। शिवाजी को आंखें खुली, प्रसाद और माला तो है लेकिन गुरु जी तो नहीं। लेकिन आस्था में चार चांद लगे। एक होते खासे एक दिन गुरु जी जिस बगीचे में बैठे थे, समर्थ रामदास वहां जाना था लेकिन रामदास तो वहां से चले गए। आराम कर रहे थे तो रामदास का एक शिष्य चिट्ठी लेके आया कि गुरु रामदास ने आपकी तड़प की कदर करते हुए अपने सेवक को चिट्ठी लेके भेजा है। सेवक का बड़ा सत्कार करता है शिवा। रामदास की चिट्ठी सर आंखों लगाता है। चिट्ठी में लिखा है, तुम यशस्वी हो, बहादुर हो, हिंदू संस्कृति में प्राण फूंकने वाले योद्धा हो, धर्मात्मा हो, लेकिन तुम्हारे राज्य में हम रहते हैं और तुमने जरा भी खबर नहीं ली है। बड़े शर्म की बात है। शिवा चौकन्ना हुआ कि, और उत्तर में लिखा कि गुरु जी ये बड़ा अपराध है, इसको तो आप ही क्षमा कर सकते, मैं क्षमा के योग्य नहीं भी हूँ फिर भी आपकी उदारता। बड़ी नम्र भाषा में गुरु को लौटता हुआ पत्र लिखा। गुरु के सत हृदय में सत्संकल्प हुआ और शिवाजी को तड़पने के बाद सतगुरु की प्राप्ति हुई। तो वास्तविक जीवन क्या है गुरु जी? इसको जो जीवन बोलते हैं तो महापुरुष बोलते हैं, ये तो मिथ्या शरीर है। तो वास्तविक जीवन क्या है? पदार्थों में परिवर्तन, इंद्रियों में शक्तिहीनता समय आता है, तो जब नाड़ी तंत्र काम विकार भोगकर अथवा परिश्रम करके अथवा अनुचित आदि खुराक खाकर नाड़ी तंत्र किसी का जल्दी कमजोर हो जाता है, तो उसकी असर आंखों पे पहले आती है। नेत्र के रोग तभी शुरू होते हैं जब शरीर का बुढ़ापा अथवा नाड़ी तंत्र की कमजोरी शुरू होती है। ये वैद्यों का, डॉक्टरों का कहना। नाड़ी दौर्बल्य से बहुत सारी बीमारियां आती है, और नाड़ी दौर्बल्य का बड़े में बड़ा मार्ग है काम विकार, अनियंत्रित काम। व्यास भगवान ने लिखा कि अष्टमी को, पूर्णिमा को, एकादशी को, षष्ठी को और जन्म दिवस को आदि दिनों में संसार व्यवहार करने से विशेष नाड़ी दौर्बल्य होता है और संतान हीन मति के आते, जिससे कांसे में, पित्तल में, चांदी में, स्वर्ण के बर्तन में भोजन करने से भोजन के दोष और पित्त दोष आदि नष्ट तो होते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन में भोजन करने से शास्त्र कहते हैं कि बुद्धि नाश होती। अब बुद्धि नाश हुई और फ्राइड का मनोविज्ञान काम विकार को छूट छाट देता है, तो विदेश में देखो तो वो बेचारे चल नहीं सकते, नींद ठीक से नहीं आती, 63% लोग अनिद्रा के शिकार हैं अमेरिका में। बाहर की तो अक्ल है, लेकिन शाश्वत जीवन के सत्संग देने वाले संतों की प्रसाद ही नहीं। जो उस प्रसाद को दे प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाय, तो उस आत्म प्रसाद के तरफ ले लो। ऐसे आत्मवेता संत भारत भूमि में मिलते हैं। मूर्ख लोग चाहे उनके ईर्ष्यावश, द्वेषवश अपनी दुर्मति के कारण कितना उन्हें बदनाम करे, कितना उनके लिए कुछ भी करे। वशिष्ठ कहते, राम जी हम बाजार से गुजरते तो मूर्ख लोग हमारे लिए क्या क्या बकते हमें सब पता है, लेकिन साधु का अवगुण नहीं खोजे। साधु में एक भी सद्गुण है तो उसका लाभ लेना चाहिए। नानक जी के लिए, कबीर जी के लिए बकने वालों ने बका था। उस समय का राजा अहंकारवश कबीर जी की सराहना, कबीर हमारे महल की सराहना करे, इस हेतु कबीर को आमंत्रित करता था, लेकिन कबीर नहीं गया। आखिर कबीर के शिष्यों को उसके मंत्री ने फोड़ा। कबीर के शिष्यों ने आग्रह किया कि महाराज, एक बार राजा ने महल बनाया वो देखने। कबीर महल देखने गए, लौट रहे थे तो राजा सामने मिला। महाराज महल कैसा लगा? सब लोग इसकी बड़ी सराहना करते हैं, आपको कैसा लगा? राजा चाहता था कि महाराज कबीर भी बोल दें, लेकिन कबीर ने कहा इसमें दो बड़ी भारी दुर्गुण हैं महल में। अरे महाराज, मेरा महल है काशी नरेश हूँ। हाँ, बड़े भारी दुर्गुण, दो दोष हैं। महाराज, अच्छा क्या लगा? अरे बोले, भारी दोष है तो अच्छा क्या लगना। राजा के तो अहंकार की हवा निकल गई। फिर भी राजा बोलता कि अच्छा महाराज, कोई कौन सा दोष है बता दो, तो मैं ठीक करवा लूं, दुरुस्त करा लूं। बोले, तुम नहीं करा सकते हो किसी भी कीमत पे, ये दो भारी दोष है वो आप दुरुस्त नहीं करा सकते, बोलना व्यर्थ है। राजा ने हट पकड़ी। आखिर महाराज ने कहा कि दो दोष ऐसे हैं कि एक कम वक्त बड़े परिश्रम से बना है, लेकिन बनाने वाले के साथ नहीं जाएगा, और बनाने वाला सदा इसमें रह नहीं पाएगा। एक दोषी है, न साथ जाएगा न बनाने वाले को सदा रख पाएगा। दूसरी बात, ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। विज्ञानी बोलते जगत सच्चा है, क्यों? बोले दिखता है। वेदांती बोलते जगत मिथ्या है, क्योंकि दिखता है, जो दिखता है वो मिथ्या है, माया है, लेकिन जिससे दिखता है उस सत्य को खोजो। ये तो भारत में ही ऐसा ज्ञान मिलता है, बाकी सब कहीं मिलता है तो भारत से लिया गया प्रसाद है, चुराया हुआ या लिया गया। राजा को तो मानो थप्पड़ लगे, वो अहंकारी राजा को दुख तो हुआ, लेकिन समय पाकर सत्य ने, कबीर के दर्शन ने राजा को गहरे में उतारा कि बात तो सच्ची है, सथा में रह नहीं पाऊंगा, ये कम वक्त चलेगा भी नहीं और जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। मिथ्या के उपदेश का एक अंश उसके चित्त में गुस्सा, और सत्य क्या है, इस निमित्त कबीर जी की शरण गए। ऐसा बड़ा भक्त हो गया कि कबीर जी ने जब जाहिर किया कि अब हम जाएंगे मगहर में, अब ये चोले का काम पूरा हो गया, तो राजा को पता चला तो भागता हुआ चरणों में पहुंचा कि महाराज मैंने संकल्प किया था कि राज काज के आकर्षण से हटकर 5 साल के लिए मैं आपके द्वार की चाकरी करूंगा, अपने हाथों से बुहारी करूंगा, महाराज अपने हाथों से पानी लाऊंगा और अपने हाथों से आटा गुनूंगा और आप श्री के लिए भोग बनाऊंगा और फिर बचा हुआ प्रसाद पाऊंगा। 5 साल मैंने आपके चरणों में बिताकर उस सत्य की, परमेश्वर की वास्तविक जीवन है उसकी यात्रा करनी। कबीर ने कहा समय बीत गया, गंगा का जल बह गया तो पर बह गया, ऐसे महापुरुष का सानिध्य और समय मिला तो मिला, ना लिया तो ना लिया। ऐसे कई मूर्ख लोग बुद्ध जब महाप यात्रा करने को जा रहे थे तो आए, महाराज हमने तो सराहना सुनी थी, हम आपके सानिध्य में आना चाहते थे, बोले अब समय पूरा हो गया। वास्तविक जीवन जानने के बिना ही वो रह गया, लेकिन इस महाराष्ट्र के शिवा ने तो गुरु की शरण ऐसी पकड़ी कि वास्तविक जीवन क्या है। तो उपदेश मिलता है लघु बोध, शिवा को दिया समर्थ रामदास, सार गर्भित बात, वास्तविक जीवन इंद्रियों से नहीं दिखता है, मन की कल्पना के परे है, जागतिक जीवन से अलग है वास्तविक जीवन। आप जो हैं वो आंखों से नहीं दिख रहे हो, दिख रहा है आंखों से तुम्हारा शरीर। आप जो है मन से नहीं दिख सकते, मन से दिखता है इंद्रियों का दृश्य और स्वर्ग नरक का काल्पनिक दृश्य अथवा स्वर्ग नरक की कल्पना आदि। मति से भी नहीं दिखता, लेकिन जिससे सारा कुछ दिखता है वह वास्तविक जीवन है। और तुम वो हो शिवा, तो अपने को खोज, मैं कौन हूं। शिवा पर गुरु के उपदेश का रंग लगा और शिवा धीरे धीरे सत्संग सुनता जाए, अंतर्मुख होता जाए, चित्त की विश्रांति मिलती जाए। विश्रांति प्रसाद की जननी है, और श्री कृष्ण कहते प्रसाद से सारे दुखों का अंत होते। आखिर वो बहादुर ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव किया, गला डूब व्यवहार में रहने वाले शिवा ने, शत्रुओं के बीच जीने वाले शिवा ने, यवनों के जुलमों के षड्यंत्रों के बीच जीने वाले शिवा ने परमात्मा साक्षात्कार किया। गुरु ने कहा बेटा अब जनक की नहीं राज्य करो, अब तुमको पता चल गया कि ये वास्तविक जीवन नहीं, हार और जीत भी वास्तविक नहीं है, यश और अपयश भी वास्तविक नहीं है, स्वप्ना हो गया। और जिन्होंने लांछन लगाए उनको तो प्रकृति कहाँ, एक को तो शेर खा गया, मूर्ख को सिंह खा गया, जिन्होंने जुलम किया था एक अधिकारी, दूसरे की क्या हालत हुई और तीसरे को क्या होने वाला और चौथे का क्या होगा, वो तो अपने अपने कर्मों को भोगेंगे। लेकिन आपकी तो तपस्या हो गई, और ये भी देख लिया, यश भी देख लिया और आरोपों का आंधी भी देख लिया, इन सब को देखने वाला जो है वो आप हैं। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, वो सौभाग्यशाली है कि जैसे ये मिथ्या संसार अपना आकर्षण के बजाय अपना कुरूप दिखाता है, अपनी सज्जनता के बदला अपने पेट में जो विष भरा है संसार में वो दिखाता है, जिसको वो आदमी बुद्धिमान है। कौशल्या, सुमित्रा और कई कई राम को कहते कि अब राम राज्य तो हुआ, अब हमें आत्मराज पाने के लिए जंगल में भेजने के लिए व्यवस्था करो। राम कहते हैं माँ कौशल्या अब तो तुम्हारी बहुत जरूरत है। कौशल्या कहती कि राम तुम ये क्या मुंह के बात बोलते हो, तुम भगवान राम अवधपति राम और मेरे पुत्र राम। जीव पैदा होता है तो उसे खिलौने और इधर उधर के और दूसरों की जरूरत दिखती है। जवान होता है तो काम विकार में लोभ में धन में दौलत में ये मिथ्या जगत की जरूरत मानता है, और बूढ़ा होता है तो मिथ्या संबंधों की जरूरत मानता है कि मेरी जरूरत बेटों को है, मेरी जरूरत फलाने को है, ये है। हकीकत में तो जीवात्मा को अपने वास्तविक आत्मा राम को पहचानने की जरूरत है। राम तुम ये ममता के वचन कौशल्या को अपनी माँ को कहोगे तो फिर राम सत्य कौन कहेगा। राम भरे नेत्रों से गदगद कंठ से हाथ जोड़कर कौशल्या अम्बा को कहते हैं कि माँ तुम धन्य हो। पिताजी उचित कहते थे कि कौशल्या का विवेक प्रखर है वैराग्य प्रखर है। माँ तुम्हारे में विवेक है वैराग्य षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, नहीं तो अयोध्या की राज माता और जंगल में कंदमूल खाकर श्रृंगी ऋषि के चरणों में बुहारी करके जिए। माँ राम तुम्हारे वैराग्य की और विवेक की और आत्म सुख में जगने की वास्तविक जीवन में जगने की मति का राम आदर करता है। माँ तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य। भगवान राम व्यवस्था करता है कौशल्या सुमित्रा और कई कई को श्रृंगी ऋषि के अरण्य आश्रम में भेजते हैं और बाकी का शेष जीवन वो तीनों देवियां वहीं बिताकर अपने परमात्मा में मिथ्या शरीर मिथ्या संबंध और रानी पद ये तो आरोपित है। मिथ्या परपंच देख दुख जन अन जिय देवन को देवतु तो सब सुख राशि है। अपने अज्ञान ते जगत सारो तू ही रचे सर्व को संहार कर आप अविनाशी है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछा। जैसे कल बताया था ना कि पावर हाउस विद्युत बनाता नहीं है, जैसे पंखा हवा बनाता नहीं है, हवा मौजूद है पंखा उसको धकेलता है फेंकता। ऐसे वातावरण में जल में कोयलों में और सामग्री में डायनामो में ये जो कुछ क्रियाकलाप होती है वो व्यापक अग्नि तत्व को एकत्रित करता है पावर हाउस। जैसे पंखे भिन्न भिन्न है लेकिन विद्युत एक है, और विद्युत का पावर हाउस कई भिन्न भिन्न है लेकिन विद्युत तत्व एक है, अग्नि तत्व एक है। पंखों के नाम लाइटों के नाम, और वही लाइट कहीं तो पानी फेंकती है, वही लाइट कहीं आवाज बढ़ाती है, कहीं वही लाइट रेलगाड़ी में हजारों पैसेंजरों को ले भागती है। ऐसे ही जो परमात्मा सत्ता है वो कहीं ऋषि कहीं मुनि कहीं देवी कहीं देवता कहीं कुछ जैसे जैसे अंतःकरण और भाव हैं वो वैसे वैसे वहाँ से सत्ता लेकर दिख रहे हैं। जो दिख रहा है वो स्पूर्णा मात्र है और जिससे दिख रहा है वो सत्य जीवन है। तो सत्य जीवन में विश्रांति पाने से शारीरिक तनाव मानसिक तनाव भावनात्मक तनाव निवृत्त होता है। इन तीनों तनावों में से कोई न कोई तनाव में, कोई दो तनाव में, कोई तीन तनाव में, तो कोई भागशाली तो एक तनाव में तो तनता ही। इन तीनों तनावों से पार हुआ तो कोई परमेश्वर तत्व में जगा वह पुरुष ही मिलता है। 98% आत्महत्याएं मानसिक तनाव और शारीरिक रोग आदि से होती है। 95% हार्ट अटैक मानसिक तनावों का ही फल बताते हैं। ये सारे तनाव तो इसलिए होते हैं जब नीर तनाव नारायण में विश्रांति नहीं है। हाई बीपी कोई बड़ा भारी रोग नहीं लेकिन आजीवन लोग दवाइयां खाते हैं। गोझरण अर्क थोड़ा सुबह पिया करें और एक एक दाना, केवल एक दाना किशमिश का गुलाब जल में भिगा के रखे, रात को सुबह खाए। 21 दिन ऐसा करे, 1, 2, 3, 21 दाने तक पहुंचे, आए बीपी गई सदा के लिए। लेकिन ये रोग मेरे को हो गया, ये बेवकूफी तो और गहरी हो रही। मेरे को रोग है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को IBP, मेरे को चिंता है, मेरे को टेंशन है। अरे तू मूर्ख कौन है, तुझे पता ही नहीं। मेरा फलाना दुश्मन है, मेरा फलाना मित्र है, तो अपने को तो जानते नहीं। ऐसों को तो श्री कृष्ण कृपा करके एकदम सुनाते रोकड़ी, मोघा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतस। उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता, उनके सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाते अभागों के। महाराज सत्कर्म व्यर्थ हो जाते क्या? सत्कर्म शुभ कर्म भी। अब जरूरी नहीं कि सारे कर्म फलित हों, अथवा ये जरूरी नहीं कि जैसा चाहो वो सारे फल आपको मिलते जाए। कुछ फल मिलते हैं, कुछ इच्छाएं पूरी होती है। जो पूरी होती है वो पदार्थ भी नहीं रहते, और पूरी जिनके लिए करते वो शरीर भी नहीं रहता। फिर स्वर्ग में गए समझो, सत्कर्म के भंडार हैं आपके पास। तो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग का सुख भोग के फिर वो नाश हो गए, तो समय बर्बाद हुआ, सारे कर्म तो नाश हो गए। सतफल नहीं दिया तो बाकी का जो दिया उसकी कीमत ही क्या है। इसीलिए कोई बुद्धिमान होता है जो सतस्वरूप परमात्मा को पाए हुए संतों के शरण जाता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान, उठो जागो, और जो महापुरुष है उनके शरण जाओ। अपने को खोजो, अपने जीवन के मूल्यवान जीवन के ये थोड़ी यात्रा करो। नश्वर जीवन के लिए मकान बढ़िया बना लिया तो राम तीर्थ बोलते हुए, हे मूर्ख धनवानो, हे मूर्ख सत्तावान, हे मूर्ख धनवान, अपना समय शक्ति मकान और फर्नीचर और नश्वर दरी शरीर को सजाने धजाने में बर्बाद मत करो, नहीं तो तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे। अपना समय शक्ति सत्य चित आनंद स्वरूप जो सारी दुनिया को सत्ता स्फूर्ति चेतना देता और जगत बन बन के बदल जाते फिर भी जो एक रस रहता है, उस परमात्मा के सुख को पाने में लगाओ, परमात्मा को खोजने में लगाओ। तो ये जो हरि ओम अथवा ओम नमो भगवते वासुदेव का शांत उच्चारण है, हर्ष उच्चारण से पाप नाश होते, दीर्घ उच्चारण से साफल्य मिलता है एक परमार्थिक, और प्लुत उच्चारण करने से संकल्प विकल्प शांत होते, मन शांत होता है, चित्त की शुद्धि बड़ी सुंदर सिद्धि। पाप करते तो सुख के लिए तो पाप करते हैं, कुछ भी करते ऐसा वैसा करके वस्तु पाए हम सुखी हों, लेकिन पाप करने के बाद उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन पाप का फल जब हृदय का ताप मिलता है, खिन्नता शांति दुख आदि, तब आदमी को सब कुछ होते ही सुविधा, तभी भी दुखी रहता है। तो सुविधाओं से सुख का संबंध नहीं है, धन से सत्ता से सुख का संबंध नहीं है। धन और सत्ता से सुविधाएं मिलेगी, लेकिन पुण्य से तुम्हारा हृदय की शीतलता मिलेगी, हृदय की विश्रांति मिलेगी। पाप से ताप मिलता है और हरि नाम और पुण्य से हृदय की शीतलता मिलती है। हृदय का शीतल होना बड़े पुण्यों का फल है, और हृदय का शीतल होना सत्संग के द्वारा सहज हो जाता है। तीर्थनाए एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। जो सत्य में जगे टिके ऐसे महापुरुष मिलते तो अनंत फल, अविनाशी फल। बाकी तो सब मोघा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचित, उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते, सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता, सारी समझ व्यर्थ हो जाती। दो रोटी कमाने की, दो रोटी फल से बड़े शरीर की सुविधा में सारा उनका ज्ञान ध्यान सारी समझ सारा साइंस वहीं खत्म हो जाता। वे लोग बड़भागी हैं कि जिनको संतों का सानिध्य मिलता है। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। इनके हृदय में आत्मराम ही गुरुओं की भक्ति है, उनका माता पिता कुल गोत्र धन्य है। वो हे पार्वती वसुंधरा भी अपने को धन्य मानती। ओ जो सुना उसका मनन करते जाओ, मन इधर उधर जाए तो ओम शांति, ओम शांति, मधुर शांति, परमेश्वरी शांति, आत्मिक शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसे स्नेह करते जाओ जो परमेश्वर है, जो आत्मदेव है, जो विश्वेश्वर है, देवेश्वर है। ओम आनंद प्रभु तेरी जय हो, आत्मदेव तुम्हारी जय हो। ओम आनंद, ओम ओम ओम। तपस्या और साधना का अमृत एकत्रित करने का सुंदर अवसर है। व्यास जी कहते हैं जो जप तप मौन व्रत और प्रभु प्रीति का प्रसाद पाकर अपने हृदय को आत्म शांति आत्म सुख से नहीं भरते तो मानो वे लोग हाथ में आए हुए अमृत कलश को ही गिरा देने का बड़ी गलती करते हैं। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, प्रभु तेरी जय हो, मधुर शांति, आत्म शांति, परमेश्वरी शांति, ओम शांति। जो हो रहा है देखें, जो होगा देखा जाएगा। हम प्रभु के प्रभु हमारे, ओम 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 ओम, एक सत्य थे, वही मस्ती, वही माधुरी। चिंता मुँह की चाकड़े धन्य धन्य अवतार। द्वारका डूब रही तो कृष्ण मुस्करा रहे हैं कि यहीं की चीज यहाँ है, मेरा क्या गया। राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ तो राम जी सम। ऐसे अवसरों पर ही अपना ज्ञान का प्रसाद में डटे। वस्तु में पैसा नश्वर है और हम अशाश्वत, हमारा उनका सदा संबंध हो ही नहीं सकता। ओम आनंद, हरि ओम, हरि ओम आनंद, हरि ओम, ओम 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 नारायण नारायण। अत्यंत बहिर्मुख व्यक्ति होते तो कीर्तन वीर्तन की जरूरत पड़ती है, जो अंतर्मुख हो जाते तो बिना कीर्तन के कीर्तन का फल फलित होने लगता है। बोला शांति। हाँ जी चलो पढ़ो।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान हैं वे सत शास्त्र को विचारें, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करें, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करें,
तब दुख का नाश करने वाली ज्ञान दृष्टि का आश्रय लें, जप का आश्रय लें, 3 घंटा जप करें कम से कम, 3 घंटा ध्यान करें, 3 घंटा आत्मज्ञान का शास्त्र विचारे, 3 घंटा सदगुरु की सेवा करे, संसार बंधन काटने का सुंदर सहज सीधा मार्ग, बाकी जिंदगी अगला दुकान में के एक मोटल होटल में खपी गई, राष्ट्रपति थी गया अमेरिका ना, तो जीवन छेवटे शू मू रेगन ने बुश ने शू मू तमने बधु मिली जैसे मोघा मोघ कर मारो बधु नश्वर में टीचाई मरवानु नारायण 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 हाँ पूरा करो।
हे राम जी, संत जन जो विरक्त आत्मा हैं उनसे मिलकर जब सत शास्त्र को विचारें तब परम पद मिलता है।
संतों के चरणों में बैठ के सत शास्त्र विचारे तब परम पद की प्राप्ति होती, शाश्वत फल की प्राप्ति होती। शिवाजी को मिल गया, तुकाराम को मिल गया, लीलाशाह बापू को मिल गया, हमको मिल गया, तो तुम क्यों नहीं पाते? तुम्हारे को क्या लगता है केवल नश्वर संसार को सत्य मानने वालों का कुसंग लगता है, इसलिए तुम नीचे पड़े। जी ने ये पानी 99 डिग्री पहुंचे मड़ी पाछू जतू करू, अरे 100 डिग्री पहुंचाड़ो त्यारे उकड़ा, 80 डिग्री पहुंचा कोई, 72-70 पहुंचा, 55 पहुंचा कोई, 22 पहुंचा 32, एक बार 100 डिग्री मारी दो छला पटेल खातू मारू बैठू। नारायण नारायण। हाँ जी।
हे राम जी, जो पुरुष सतशास्त्र का विचारने वाला और संजनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है वह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र है। तुम तो
उदाहरण है तो ज्ञान और अनुभव कर लिया तो विज्ञान, संसार का विज्ञान वस्तुओं की बात है, ये तो आत्मज्ञान और फिर आत्मानुभव बराबर विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचन। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त, फिर उसके लिए लोहा और सोना सब पंचभूत है, धन और निर्धनता सब खिलवाड़ है, यश अपयश सब खेल। तुलसी भरोसे राम के पाकू कर,
तुलसी भरोसे राम के,
निश्चिंत होई सोए,
निश्चिंत होई सोए,
अनहोनी होनी नहीं,
अनहोनी होनी नहीं,
होनी होए सो होए,
होनी होए सो होए।
कई बार नहीं चाहते तभी भी ऐसी घटना हो जाती, निर्दोष आदमी नहीं चाहते तभी दोषी बन जाते, हरामी नफट बेईमान आदमी ले दे के पैसे वैसे कुछ का कुछ कर देते, सत्य को फ्रॉड कर देते, फ्रॉड को सत्य कर देते, लांच रुश्वत और निर्दोष बेचारे गाय जैसे जयंती को भी। अब इच्छा तो नहीं थी जयंती की अथवा किसी की कि ऐसा हो, फिर भी जो होनी थी लेणु देणु नहीं चाहते थे वो हो गया, तो जो होनी है होती है, आज तो ऐसे जो आना है तो आता है, फिर चिंता करके क्यों मरे। अन होनी होनी नहीं, नहीं थावा वालू नहीं थे, अन थावा वालू कोई रोगी ना शक रहता है, थोड़ा घणो प्रयत्न मांगी टेंशन है वारी लेस टेंशन लेस इगो लेस आया तो शू लेने आया अन जैसू तो शू लेंगे। एक महात्मा था, गुरु पूनम भी थी, गुंडों ने देखा डकैतों ने कहा अरे महाराज के पास तो खूब माल आया होगा, रात को महात्मा की कुटिया पे जा दम के हे महाराज ये ला पिस्तौल लाओ जो भी कुछ है माल रखो। महाराज ने उतारा अपना चादर अपना वो सब उतार के दिया, लंगोटी में खड़े हुए बोले जो है सब तुम्हारा, महाराज तो चले गए टिल्ले पे, है तक देना देख अब भी नफे में हम, ओ हम सो हम अब भी नफे में। वो डाकुओं का मुखिया देखता कि महाराज ये सब छोड़ के चले गए ना, कहाँ गए, कहीं भक्तों को या पुलिस को तो नहीं बुलाते, देखा तो नाच रहे बाजू में टिल्ला है उधर टेकरी छे ना ऊपर नाच है पंचेड़ जीवी टेकरी ऐसे कोई महाराज नहीं तक दिना दिन अज्जी नफा मा। बोले महाराज अभी नफे में कैसे, बोले देख हम आए थे ना तो लंगोटी नहीं थी, सब देने के बाद भी लंगोटी तुम्हारे जैसे डाकू ने लंगोटी नहीं लिया तो लंगोटी नफे में है कि नहीं, आए थे तो एकदम बालक इतना खाया पिया पहरा ओढ़ा और गुरु का ज्ञान सुना और ये सब न मिथ्या में सत्य हूं इतना ब्रह्म ज्ञान ये भी नफे में, हम घाटा क्या पड़ा, हम आए थे तो खाली हाथ थे और लंगोटी तो भी तुम भी नहीं मांगते चाहिए क्या लंगोटी, बोले नहीं महाराज कितना सत्य है जीवन का, संसार स्वप्न है परमेश्वर अपना है अपने साथ है, फिर भी आज तक उसकी मुलाकात नहीं और संसार के छोटे छोटे दुख सुख में हम पच के मर रहे हैं। भगवान करे कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान करे कि भगवान में प्रतिष्ठित हो जाए बुद्धि। ओम शांति।